भागवत सार की श्रृंखला में आज छठे अध्याय पर चर्चा है, चौथे स्कंद के। तो इसके एक श्लोक को दोहराएंगे। तदा कर्ण्य विभु प्राह तेजीयसी कृतागसी क्षेमाय तत्र साभूयान् न प्रायेम बभूषतां। तदा कर्ण्य विभुः प्राह तेजीयसि कृतागसि क्षेमाय तत्र साभूयान् न प्रायेण बभूषतां। तदा कर्ण्य विभुः प्राह तेजीयसि कृतागसि क्षेमाय तत्र साभूयान् न प्रायेण बभूषतां। अन्यों द्वारा वर्णित घटनाएं आकर्ण्य सुनकर विभु ब्रह्मा ने प्राह उत्तर दिया, तेजीयसी महापुरुष कृत आगसी अपराध किया गया, क्षेमाय अपनी कुशलता के लिए तत्र उस प्रकार सा वह भूया अच्छा नहीं है, प्रायेण सामान्यतः बुभूषताम रहने की इच्छा। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जब ब्रह्मा ने देवताओं तथा यज्ञ में सम्मिलित होने वाले सदस्यों से सब कुछ सुन लिया तो उन्होंने उत्तर दिया, यदि तुम किसी महापुरुष की निंदा करके उसके चरण कमलों की अवमानना करते हो तो यज्ञ करके तुम कभी सुखी नहीं रह सकते, तुम्हें इस तरह से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तात्पर्य, ब्रह्मा ने देवताओं को बताया कि यद्यपि दक्ष सकाम यज्ञ कर्मों के फल भोगना चाहता था, किंतु जब कोई शिव जैसे महान पुरुष का अपमान करता है तो वह उसे भोग नहीं सकता। यह तो दक्ष के लिए अच्छा हुआ कि वह युद्ध में मारा गया, क्योंकि यदि वह जीवित रहता तो वह बारंबार महापुरुषों के चरण कमलों को अपमानित करता। मनु के नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हत्या करता है तो दंड उसके हित में होता है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो वह बारंबार हत्याएं करके भविष्य में अपने अनेक जन्मों तक बंधन में पड़ता रहेगा। फलतः हत्यारे को राजदंड उचित होता है। जो अत्यधिक पापी हैं यदि वे भगवान की कृपा से मार डाले जाते हैं तो वह उनके लिए अच्छा होता है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि दक्ष का मारा जाना अच्छा ही है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां वावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम तो इस अध्याय पर चर्चा से पहले हम सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहरा लेंगे। सर्वशास्त्राधिपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाद्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्णपरिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु ते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तु ते। असाधु साधु तदायीन अतिनीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेरणारुत्कंठयोस्फुरा। हरे कृष्ण। दक्ष के यज्ञ की कथा चल रही है। पिछले अध्यायों से सती ने अपने देह को त्यागा और फिर पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे शिवजी को क्रोध आया। क्यों क्रोध आया ये चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। तो शिवजी ने एक असुर को प्रकट किया और फिर उसने जाकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया। तो ये हम लोग अब तक सुन चुके हैं। तो अब जब यज्ञ का विध्वंस हो गया और ऐसा विध्वंस हुआ था कि सारा कुछ तहस नहस, बहुत से जो लोग वहां पर थे उनके शरीरों को तोड़ दिया गया, किसी का हाथ नहीं, किसी का पांव नहीं, किसी का, बहुत सारे ऐसे, दक्ष का वध हो गया। वीरभद्र ने दक्ष को मार दिया और फिर सारा तहस नहस करके वापस कैलाश चले गए। अब सारे देवता जो अब घबराए हुए थे, ऐसी अवस्था में थे, वहां के ऋषि मुनि इत्यादि, वे सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, क्योंकि ब्रह्मा जी को वो बताना चाहते थे, ब्रह्मा जी से पूछना चाहते थे अब हम क्या करें। तो वे सब पहुंचे, उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया कि क्या हुआ। और उस समय ब्रह्मा जी, जो हम लोग आज का श्लोक पढ़ रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने कारण बताया कि आपने अपराध किया शिव जी के प्रति। महान व्यक्तियों के प्रति अपराध करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, चाहे कितने ही बड़े यज्ञ क्यों ना कर ले। तो ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं कि दक्ष बहुत बड़े यज्ञ कर रहा था सुखी होने के लिए, आनंद लेने के लिए, लेकिन उसके चलते उसने एक महान वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया, महान व्यक्ति का अपमान कर दिया, इसीलिए उस यज्ञ के फल को भोग नहीं पाया। यज्ञ तो किया लेकिन यज्ञ का फल क्या होना चाहिए था? उसको सुख मिलना चाहिए था, आनंद मिलना चाहिए था, क्योंकि वो तो इतना बड़ा यज्ञ कर रहा था। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं उसको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो अयोग्य हो गया उस फल को भोगने के लिए। अपमान किया इसीलिए फल को भोगने के लिए अयोग्य हो गया। दूसरे शब्दों में, अगर कोई व्यक्ति किसी महान व्यक्ति का या वैष्णव के प्रति अपराध करता है और उसके बाद जाकर कुछ भी कार्य करता है, कितने ही विधि विधानों का पालन करता है, कितनी ही भक्ति कर लेता है, तो उसके लिए इस जीवन में फिर वो फल को भोग नहीं सकता, अर्थात वो सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान उस अपराध को स्वीकार कर लेते हैं। वैष्णव अपराध को स्वीकार करें या ना करें, जैसे शिवजी ने अपराध नहीं माना, हो सकता है जब उनका अपमान हुआ, लेकिन भगवान ने तो उसको स्वीकार किया और इसीलिए इतना बड़ा व्यवस्था उन्होंने की जिससे देवताओं को और आगे आने वाले हम लोगों को ये सूचना मिले कि कभी भी किसी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। तो एक प्रश्न आता है कि ब्रह्मा जी ने पहले ही क्यों नहीं समझा दिया? जिस समय दक्ष अपमान कर रहा था उस समय भी तो समझा सकते थे ब्रह्मा जी। दक्ष जब अपमान, पहले ही यज्ञ में जब शिव जी का अपमान किया और बाकी लोग हंस रहे थे, जैसे हम कल वर्णन कर रहे थे कि जो लोग हंसे थे उनके दांत तोड़ दिए वीरभद्र ने, किसी की मूछ निकाल दी, किसी की आंखें निकाल दी, क्योंकि ये सब लोग सहयोग कर रहे थे दक्ष को, आनंद ले रहे थे जब दक्ष उनकी निंदा कर रहा था। तो ब्रह्मा जी ने वहीं क्यों नहीं रोक दिया? क्या ब्रह्मा जी उस समय नहीं जानते थे कि ये जो इतना बड़ा ये अपराध कर रहा है शिवजी के प्रति, वैष्णव के प्रति, तो इसका क्या फल होगा? क्या शिवजी नहीं, क्या ब्रह्मा जी नहीं जानते थे? तो फिर ब्रह्मा जी ने वहीं क्यों नहीं रोक दिया कि रुक जाओ ये सब मत करो? दक्ष को वहीं क्यों नहीं डांट दिया? क्यों सब होने दिया, और उतना होने के बाद भी दक्ष को कह रहे थे ठीक है रहने दो, रुक जाओ, जाओ मत उस यज्ञ में, जब वो गुस्से में जा रहा था। और अन्य देवताओं को भी ब्रह्मा जी ने नहीं समझाया उस समय, और जो यज्ञ कर रहे थे उनको नहीं समझाया। उसके बाद काफी समय निकल गया, फिर भी ब्रह्मा जी ने नहीं समझाया। अब जब सारा विध्वंस हो गया, दक्ष मर गया, सती देवी के प्राण चले गए, अब ब्रह्मा जी समझा रहे हैं। तो देव बाहरी दृष्टि से तो गलत है, ब्रह्मा जी को तो पहले ही समझा देना चाहिए था। तो ब्रह्मा जी ने क्यों नहीं समझाया, इसका पहला कारण, ब्रह्मा जी भगवान की योजना में बाधा नहीं डालते। ब्रह्मा जी जानते हैं कि अगर ये कुछ हो रहा है तो भगवान की योजना होगी और भगवान कुछ दिखलाना चाहते हैं, तो इसलिए ब्रह्मा जी उस योजना में बाधा नहीं डालते हैं। वैसे तो ब्रह्मा जी क्या नहीं जानते इस ब्रह्मांड में क्या क्या होने वाला है, उन्होंने ही तो सबकी सृष्टि की है, उन्होंने ही अधर्म बनाया है, उन्होंने ही सारी सृष्टि की जीवों को मोह में डालने के लिए। हम सब पढ़ चुके हैं पहले स्कंदों में कि कैसे ब्रह्मा जी ने तमा मोह महामोह तामिश्र अंध तामिश्र ये सब की रचना ब्रह्मा जी ने कर दी। तो ब्रह्मा जी तो जानते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी बाधा नहीं बनना चाहते हैं। वो जानते भगवान की योजना है, ये तो होना है। और दूसरा कारण ब्रह्मा जी ने पहले क्यों नहीं समझाया, क्योंकि उस समय देवता और ऋषि मुनि तैयार नहीं थे उस चीज को समझने के लिए। इसका क्या प्रमाण है, ब्रह्मा जी तो बुला रहे थे, ब्रह्मा जी वापस बुला रहे थे दक्ष को, लेकिन दक्ष ने सुना नहीं। तो जब ब्रह्मा जी की ये बात नहीं सुनी उसने दक्ष ने कि अरे जाओ नहीं, रुक जाओ, रहो यहीं पे, यज्ञ करो, कोई बात नहीं हो गया, तो उसको नहीं सुना, तो क्या ब्रह्मा जी की ये उपदेश कि वैष्णव का अपमान नहीं करना चाहिए दक्ष सुन लेता, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए ब्रह्मा जी इंतजार कर रहे थे सही समय का कि अब जब देवताओं ने देख लिया, अनुभव कर लिया कि एक वैष्णव का अपमान करने से क्या होता है, अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि इसका कारण ये है जो तुम लोगों ने किया, इसका कारण वैष्णव अपराध है। तो ब्रह्मा जी सही समय का इंतजार कर रहे थे। कभी कभी हम लोगों को भी बहुत कुछ भक्ति में समझाया जाता है, लेकिन जब तक हमें कोई बुरा अनुभव नहीं हो जाता, हम उस बात को समझने के लिए तैयार नहीं रहते। व्यक्ति अनुभव करना चाहता है, और अनुभव के बाद जब बुरे अनुभव हो जाते हैं उसके बाद उसको लगता है हाँ मैंने गलती कर दी, और तब आप उसको बोलिए तब उसको स्वीकार करता है। जब अहंकार में होता है, जब अच्छी स्थिति में होता है, तो इन बातों को स्वीकार नहीं करता। दक्ष ने सुना नहीं, हो सकता है अगर दक्ष उस समय सुनकर वापस आ जाते, ब्रह्मा जी से नम्रता से पूछते बताइए मैं क्या करूं, तो ब्रह्मा जी कह देते कि इतने महान व्यक्ति के प्रति अपराध मत करो, तुरंत क्षमा मांग लो। दक्ष क्षमा मांग लेते, सब कुछ समाप्त हो जाता, ये सब होता नहीं। लेकिन दक्ष तैयार नहीं थे, उन्होंने सुना नहीं। अन्य देवता अन्य ब्राह्मणों ने भी, क्योंकि ब्राह्मण क्या कर रहे थे, देखिए भागवत में प्रमाण दिए गए इस बात के कि ब्रह्मा जी ने क्यों नहीं समझाया, क्योंकि ब्राह्मण क्या कर रहे थे, उन्होंने तो श्राप देना शुरू कर दिया। नंदी ने कहा, नंदी ने दिया, तो उस समय भृगु इत्यादि जो थे वो तो रुक सकते थे, वो कह सकते थे कि ठीक है हमसे क्षमा कर दीजिए, हमसे अपराध हो गया शिव जी के प्रति, तो इसीलिए हम क्षमा मांगते हैं। किसी ब्राह्मण ने क्षमा नहीं मांगी, किसी देवता ने क्षमा नहीं मांगी वहां उस यज्ञ में, अर्थात वो तैयार नहीं थे। तो इससे हमें एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश लेना चाहिए कि हमें इंतजार नहीं करना चाहिए उस क्षण का जब सब कुछ समाप्त हो जाए, और तब हमें जो वैष्णवों की वाणी है या बड़े वरिष्ठों की वाणी है उसके महत्व को हम समझें। हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है जो चल रहा है चलने दो चलने दो, जब बहुत कष्ट आएगा जीवन में तब भागकर भगवान के पास आएंगे। तब पूछेंगे जाकर वैष्णवों से कि हमें क्या करना चाहिए, अब इतना कष्ट हो गया। नहीं, पहले ही पूछ लेना, पहले ही नम्रता दिखलानी है। अगर दक्ष ने उसी दिन नम्रता दिखला दी होती तो न सती का प्राण जाते न दक्ष के प्राण जाते। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए हमें वैष्णवों से आचरण में, और खास करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलने में। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अनुभव, जैसे युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ना, अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषास्थावरम् इच्छन्ति। तो सबको जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन हमारे मन में ये नहीं आता कि हम कभी मरेंगे, हम तो अभी रहेंगे। हाँ, जब बूढ़े हो जाते हैं, जब शरीर कमजोर होने लगता है, तब थोड़ा थोड़ा लगने लगता है कि शायद मैं मरने वाला हूं। लेकिन एक 70 साल के बूढ़े को भी ये नहीं होता कि शायद कल मैं मर जाऊं, नहीं, वो तो प्लानिंग करता है उस समय भी। 70 साल की उम्र में भी योजना बनाता है कि इस साल मेरे बिजनेस में क्या करूंगा, या आगे क्या होगा, मेरे बच्चों के बच्चों को अमेरिका भेजूंगा, या जो भी है। 70 साल की उम्र में भी योजना बनाता है। इसीलिए कोई व्यक्ति अपनी वसीयत नहीं लिखते हैं। जब वो बेड पे आ जाते तब बहुत तकलीफ होती, तब बुलाओ बुलाओ किसी को, तब बताने लगते हैं। बताइए, युवा अवस्था में कोई वसीयत लिखता है अपनी? 40 साल का व्यक्ति लिखता है कि अगर मैं मर गया तो मेरा जितना भी धन है वो इसको मिल जाए? नहीं लिखता। क्यों? क्योंकि मालूम है मरूंगा नहीं। इसी तरह यही आश्चर्य है, और इसी तरह भक्ति के में आश्चर्य ये है कि जब तक हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो जाता, हम लोगों को समझ में नहीं आता। आचार्यों की वाणी है, प्रभुपाद के शब्द हैं, प्रभुपाद के ग्रंथ हैं, जो हमें समझाते हैं हमें आचरण कैसा करना चाहिए। लेकिन जब तक हम कोई बुरा अनुभव नहीं ले लेते, हम उनको सीखते नहीं। तो इसीलिए ब्रह्मा जी उस समय चुप हो गए कि ये लोग अभी सुनने वाले नहीं हैं, जब समय आएगा तब उनको बताएंगे। तो अब समय आया, ये सब आकर पूछने लगे बड़ी नम्रता से, ब्रह्मा जी बताइए क्या करें, सारे देवताओं के किसी के हाथ टूटे हुए हैं, किसी के पांव टूटे हुए हैं, तो अब आप बताइए क्या होना है। तब ब्रह्मा जी ने बताना शुरू किया कि ये तुमने गलती की। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, शिव जी वैसे ही बहुत दुखी हैं, एक तो उनकी पत्नी का प्राण चले गए, उनको वैसे ही दुख है, और ऊपर से आप लोग अभी इतना यज्ञ कर उस इत्यादि कर रहे हैं, तो एक काम कीजिए, सबसे अच्छा आपके लिए यह है शिव जी की शरण जाइए। ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा कि चिंता मत करो, मैं बात कर लेता हूँ शिव जी को, फोन लगाता हूँ अभी, बोलता हूँ उनको कि चलो जो हो गया छोड़ो। उन्होंने कहा नहीं, आप सबको शिव जी की शरण जानी, अर्थात जिसका अपराध किया है उसके शरण जाइए। मेरा अपराध नहीं किया आपने, इसलिए मेरी शरण आकर कोई लाभ नहीं, कुछ नहीं होने वाला, शिव जी की शरण जाइए। तो ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को कहा कि आपको उनको उनकी शरण जाना चाहिए, क्योंकि शिव जी एक वैष्णव हैं, उनके प्रति अपराध हुआ है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें, हम सब अधीन हैं, और अधीन व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है कि वो शरण में रहें। और यही कारण है भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हम सब अधीन हैं भगवान की, और अगर भगवान की शरण को त्याग देते हैं तो फिर हमारे लिए कोई गति नहीं है। जैसे देवताओं ने शिव जी की शरण को त्याग दिया तो कोई गति नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे अब आपके लिए एक ही गति है, शिव जी की शरण लीजिए। इसी तरह जब हम भगवान की शरण को त्याग देते हैं अपने भोगों के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपने किसी आसक्ति के लिए, अपने शरीर के लिए, तो फिर क्या मिलता है? भगवान की शरण को त्याग देते हैं तो केवल कष्ट मिलता है। इसलिए जानना चाहिए कि भगवान की शरण हमें कभी नहीं त्यागनी। तो शिव जी ने कहा आप सब उनकी, ब्रह्मा जी ने कहा आप सब शिव जी की शरण में जाइए। तो ये 7 श्लोकों तक वर्णन है, और फिर ब्रह्मा जी सारे खुद भी चले, सारे देवताओं को लेकर अब कैलाश की ओर चलने लगे कि चलिए मैं भी चलता हूं, मैं बात करूं, क्योंकि देवता मानो कह रहे हो कि आपने तो कह दिया लेकिन जाएगा कौन शिव जी के सामने, इतने क्रोध में है वो कि वीरभद्र के साथ सारा ध्वंस कर दिया, फिर भी कुछ उनका क्रोध शायद कम नहीं हुआ होगा, तो जाएगा कौन, आपने तो कह दिया जाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो मैं चलता हूँ, मुझे क्रोध नहीं करेगा वो। ब्रह्मा जी भी वैसे थोड़ा घबरा रहे थे, आगे वर्णन आएगा, ब्रह्मा जी को भी डर लग रहा था क्योंकि शिव जी का क्रोध हो तो प्रलय ले आते हैं, सारा ब्रह्मांड नाश करते हैं। तो ब्रह्मा जी भी थोड़ा घबरा रहे थे, लेकिन फिर भी कर्तव्य है, ड्यूटी है, क्या करें, ब्रह्मा जी तो मना नहीं कर सकते हैं, सारे देवता बाकी मना कर सकते, ब्रह्मा जी कैसे मना करें कि मैं नहीं जाऊंगा, भगवान के सामने कर देते। जब नरसिंह देव आए तब कर दिया उन्होंने, ब्रह्मा जी को कहा तब भी ब्रह्मा जी को ही कहा सब देवताओं ने आप जाइए मैं नहीं जाता। तो अब सब लोग चले कैलाश की ओर। तो अगले 14 श्लोकों में कैलाश का वर्णन है, 8वें श्लोक से लेकर आगे 14 श्लोकों तक कैलाश कैसा है, जो शिव जी का धाम है वो कैसा है। तो उसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कि कैसे वहाँ पर बड़े बड़े पर्वत हैं, पर्वत की गुफाओं में बड़े अच्छे अच्छे मोती हैं, रत्न हैं, और वहाँ के वृक्षों का वर्णन किया गया, फूलों का वर्णन किया गया, वहाँ के फलों का वर्णन किया गया कि अलग अलग प्रकार के वृक्ष हैं वहाँ, अलग अलग प्रकार के फूल फल हैं, और फिर सरोवर का वर्णन किया गया, वहाँ पर अलकनंदा जहाँ पर सती देवी स्नान किया करती थी उस स्थान का वर्णन किया गया। तो ये सब देवता देख रहे हैं, और पास ही में कुबेर की नगरी अलकापुरी उसका वर्णन किया गया कि कुबेर की भी नगरी पास में ही है, वो भी उन्होंने देख ली। तो ऐसे कैलाश का वर्णन किया गया कि कैसे सब तरह से बहुत सुंदर स्थान है वो, और तो और शिव जी का जो स्थान है वो विषमता में समता को प्रस्तुत करता है। शिव जी के वहां पर कोई भी जीव कोई भी व्यक्ति क्रोधी नहीं है, द्वेषी नहीं है कैलाश में। जैसे देखिए शिव जी का वाहन क्या है, हाँ बैल, नंदी बैल है, और जो उनकी पत्नी है पार्वती उनका वाहन क्या है, शेर, राइट। तो पत्नी का वाहन शेर है और शेर खाता है बैल को, तो दोनों तो साथ में ही खड़े होते होंगे ना, वहां पर साथ में ही रहते होंगे, पार्किंग एक ही जगह करते हैं गाड़ियां, है ना। ऑफकोर्स कहना नहीं चाहिए पार्किंग नंदी बहुत श्रेष्ठ है, तो लेकिन वहां शेर खाता नहीं नंदी को। या फिर शिवजी गले में सर्प धारण करते हैं, और उनका जो पुत्र है गणेश उसका वाहन क्या है, और सर्प क्या खाता है, चूहा खाता है ना, सर्प चूहे को खाता है ना, यहाँ पे जब चूहे बढ़ जाते तो सांप दिखाई देने लगते हैं, चूहा खाने के लिए आते। तो शिव जी के गले में सर्प रहता है और चूहा इनका वाहन है गणेश जी का, लेकिन वो खाता नहीं कभी, अगर खा जाए तो गणेश जी को रोज नई गाड़ी खरीदनी पड़े। सुबह आए गणेश जी अपनी गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, कहाँ गए, बोला वो खा गया। तो शिव जी के लोक में ऐसा नहीं है, वहां सब प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं है, विषमता में समता है, ऐसा शिव जी का वो धाम, शिव जी का लोक कैलाश का वर्णन किया गया। वैसे शिव जी के और एक पुत्र हैं जिनका वाहन है मोर, और मोर खाता है सांप को। तो सारी चीजें आप देख लीजिए, सब हैं लेकिन कोई किसी को खाता नहीं। तो ऐसे कैलाश में वे लोग गए और उन्होंने एक बहुत विशाल वृक्ष देखा, वट वृक्ष, इतना विशाल था कि उसकी जो लंबाई थी वो 100 योजन थी, 100 योजन मतलब 800 मील, 800 मील यानी यहां से आप बंबई पहुंच जाओगे शायद, है ना, इतना ऊंचा था वो वृक्ष, और कितना फैला हुआ था, 600 मील तक फैला हुआ था, बड़ा विशाल वृक्ष, लेकिन उस पर एक भी घोंसला नहीं था, एक भी पक्षी की आवाज नहीं आ रही थी, बड़ा शांत था, और उस वृक्ष के नीचे शिवजी बैठे हुए थे। तो देखिए ऐसे ही एक वृक्ष का वर्णन भगवान ने भगवद गीता में भी किया, वो भी वट वृक्ष ही है। अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम् वेद स वेदवित्। भगवान इस भौतिक जगत की तुलना भी ऐसे ही एक विशाल वृक्ष से करते हैं कि एक विशाल वृक्ष है ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम, जिसकी जो जड़ है वो ऊंचे ऊपर की ओर है और जो शाखाएं हैं वो नीचे की ओर है। ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्, तो ऐसा ये एक वृक्ष है। तो शिव जी भी बड़े विशाल वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और उन्होंने देखा कि शिव जी के साथ बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हैं, चर्चा चल रही है, चार कुमार बैठे हैं, कुबेर बैठे हैं, नारद मुनि बैठे हैं। तो शिव जी क्या कर रहे हैं, मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम। शिव जी नित्य भगवान की कथा करते हैं, तो वहां पर बैठे हुए दूर से जब देवताओं ने देखा वो भगवान की कथा चल रही है तो उनके चेहरे को देखकर देवताओं को लगा लग रहे हैं शांत तो हो गए, क्रोध तो नहीं दिख रहा है दूर से। ये वर्णन है इस कि वो लोग करने लगे कि दूर से देखा। तो फिर सारे लोग पहुंचे वहां पर देवता, तो वहां वर्णन है कि चार कुमार और कुबेर दोनों बैठे हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि इन दोनों का नाम क्यों दिया गया, और भी तो बहुत लोग बैठे हैं, तो कुबेर और चार कुमारों का नाम दिया गया। प्रभुपाद समझाते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त है उसके पास भौतिक ऐश्वर्य और आध्यात्मिक ऐश्वर्य दोनों हो सकते हैं। कुबेर भौतिक ऐश्वर्य के सूचक हैं, कुबेर तो धनाढ्य हैं ना, धन के रक्षक हैं, खजांची हैं, और चार कुमार उनके पास कौन सा धन है, वो तो विरक्त हैं, लेकिन उनके पास आध्यात्मिक धन है क्योंकि वो भागवत बोलते हैं, उनको ज्ञान है भक्ति का, भगवान ने स्वयं उनके ऊपर कृपा की है। तो इसीलिए प्रभुपाद समझाते हैं कि जो भगवान की भक्ति कर लेते हैं उसको भौतिक ऐश्वर्य भी मिल जाता है और आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी। कभी केवल आध्यात्मिक हो सकता है, कभी केवल भौतिक हो सकता है, और कभी दोनों हो सकता है, ये तो भगवान की कृपा। जैसे चैतन्य लीला में हम लोग एक भक्त का वर्णन सुनते हैं, पुंडरिक विद्यानिधि, जब वो आए वहां पर थे नवदीप में, तो एक दिन एक भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्त दूसरे भक्त को ले गए कि आओ तुम्हें बड़े महान वैष्णव से मिलाता हूं। तो बहुत तैयार हो गए, अच्छा है वैष्णव के दर्शन होंगे, तो तुरंत तैयार हो गए, पर ये भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये भी बड़े वैष्णव थे। लेकिन जैसे इन्होंने सुना कि एक महान वैष्णव के दर्शन करने हैं तुरंत चल दिए। तो अब आए और उन्होंने देखा पुंडरिक विद्यानिधि वो अपने कमरे में लेटे हुए हैं और बड़े आलीशान बिस्तर पर लेटे हुए हैं, बहुत आलीशान बिस्तर, और दास दासियां हैं, उनको पंखा झल रही हैं, उन्होंने वस्त्र भी बड़े आलीशान पहने हुए हैं, मुंह में पान चबा रहे हैं, आसपास लोग थूकदान पीकदान लेकर खड़े हैं कि जब उन्हें थूकना हो तो तैयार लेने के लिए दास दासियां, और बड़ा ऐश्वर्य। तो इन्होंने सोचा ये वैष्णव है ये कैसे वैष्णव हो सकते हैं, इतने ऐश्वर्य में रह रहे, इतने ऐश्वर्यशाली, वैष्णव मतलब वैरागी होना चाहिए उसको, कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और यहां देखो ये तो आराम से दास दासियां सब लेकर खड़े हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, ये कैसा वैष्णव। इतना मन में आ गया तो जो साथ में थे उनके श्रीवास उनको समझ में आ गया कि मुकुंद के मन में थोड़ा सा ये आ गया है कि ये कैसे वैष्णव है, ये तो मुझे बोल रहे थे इतने बड़े वैष्णव हैं और ये तो ऐसे लग नहीं रहे कि वैष्णव है। तो उस समय उन्होंने दिखलाने के लिए भागवत के श्लोक कहे, अहो बकीयम सनकाल कूटम जिघाम सयापायदप्य साधवी। तो ऐसे कुछ श्लोकों को कहा, उनको केवल सुनकर पुंडरिक विद्यानिधि जो आराम कर रहे थे जैसे ही श्लोकों को सुना एकदम भाव विभोर हो गए, उस बिस्तर से नीचे उतर गए, जमीन पर लौटने लगे, कपड़ों को फाड़ दिया, एकदम एकदम भाव में चले गए, कृष्ण का स्मरण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और तब पता चला कि कितने महान वैष्णव हैं, केवल श्लोकों को सुनकर जिसके ऊपर इतना प्रभाव हो जाए तो कितना महान वो व्यक्ति होगा। तो इसीलिए ये उदाहरण है कि भौतिक ऐश्वर्य भी है और आध्यात्मिक भी है। लेकिन कभी कभी भगवान केवल भौतिक ऐश्वर्य दे देते हैं किसी व्यक्ति को, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के साथ भगवान जब ऐश्वर्य देते हैं साथ साथ में अनासक्ति भी देते हैं। देवी देवता जब ऐश्वर्य देते हैं वो आसक्ति देते हैं, ये अंतर है। देवी देवताओं के द्वारा जब हमें ऐश्वर्य मिलता है तो हम उससे आसक्त रहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते मृत्यु तक। लेकिन भगवान जब ऐश्वर्य देते हैं, जैसे ध्रुव महाराज को दिया, आगे हम लोग उनकी कथा सुनने वाले, तो भगवान जब ऐश्वर्य देते हैं साथ में अनासक्ति दे देते हैं। भगवान ने ध्रुव महाराज को दिया ऐश्वर्य, या फिर सुदामा को दिया, लेकिन सुदामा कोई आसक्त नहीं हुए इतने बड़े महल को देखकर, ऐसा नहीं हुआ कि सब भक्ति भूल गए। अनासक्ति भी देते हैं, भक्ति भी देते हैं। तो ये भगवान का गुण है। अगर भगवान सोचते हैं कि ये व्यक्ति ऐश्वर्य में रहकर भी मेरी भक्ति कर सकेगा, उसे ऐश्वर्य भी दे देते हैं। लेकिन जहां भगवान सोचते हैं कि इसका सारा ऐश्वर्य ले लेने से ये मेरे निकट आएगा, तो भगवान सब कुछ ले लेते हैं। हरिष्यामि तत् धनम शनैः, जिस उसका जो धन है, जिस पर भगवान कहते हैं कि जिस पर मैं अपनी विशेष कृपा करता हूं, ये दसवें स्कंद में वर्णन आता है। युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया था तो उन्होंने कहा जिस पर मैं अपनी बड़ी विशेष कृपा करता हूं उसका सारा धन हरण कर लेता और फिर उसके पास कुछ नहीं रह जाता, वो मेरी शरण में आ जाता है। उसके घर वाले उसको निकाल देते हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है अभी शिव भगवान की शरण। तो इसीलिए चार कुमार और कुबेर दोनों बैठे हैं। तो अब शिव जी के पास देवता जाने लगे, तो जैसे ही देवता आए, शिव जी ने देखा कि ब्रह्मा जी भी आए हैं देवताओं में, तो जैसे ही ब्रह्मा जी को देखा उठकर खड़े हो गए और उन्होंने प्रणाम किया, चरणों को स्पर्श किया। ये वर्णन है, शिव जी ने ब्रह्मा जी के चरणों को स्पर्श किया, दंडवत प्रणाम किया उनको। बाकी सारे भी जितने ऋषि मुनि वहां बैठे थे वो सब खड़े हो गए, उन्होंने भी प्रणाम किया ब्रह्मा जी को देखकर। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि देखिए ये आचरण, वैष्णव आचरण, शिव जी को आवश्यकता नहीं है, शिवजी ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी एक वैष्णव आचरण का पालन करने के लिए वे ऐसा करते हैं, चरणों को स्पर्श कर रहे हैं ब्रह्मा जी के, शिवजी। तो ऐसे कई उदाहरण, भगवान भी ऐसा करते हैं। जब भगवान हस्तिनापुर आते थे तो युधिष्ठिर महाराज के चरणों को स्पर्श किया करते थे, अपने ही भक्त के। युधिष्ठिर कौन है, वो तो भक्त है, वो तो कोई भगवान से श्रेष्ठ नहीं है, कृष्ण से श्रेष्ठ तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन भगवान चरणों को स्पर्श करते थे युधिष्ठिर महाराज के। एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कि व्यक्ति को वैष्णव आचरण कभी नहीं त्यागना चाहिए। वैष्णव आचरण ये भक्त के लिए आभूषण है। भक्त के लिए क्या आभूषण हो सकता है, सोना चांदी इत्यादि कोई आभूषण नहीं है भक्त के लिए, लेकिन भक्तों के लिए वैष्णव आचरण ये ही एक आभूषण है। तो शिवजी आचरण करके दिखला रहे हैं कि हर अवस्था में हमें वैष्णव आचरण का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैष्णव आचरण ये भगवान को प्रसन्न करता है, वैष्णव आचरण ये भक्ति करने के लिए बड़ी मदद करता है, वैष्णव आचरण हृदय में नम्रता लाता है, और वैष्णव आचरण ये आध्यात्मिक जगत का अभ्यास है। आध्यात्मिक जगत जाकर अगर हमें आचरण नहीं पता कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, तो फिर कैसे रहेंगे, उसका अभ्यास हमें यहां करना चाहिए। तो ये वैष्णव आचरण है, इसीलिए बड़ा आवश्यक है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, हृदय में नम्रता लाने के लिए, भक्ति में प्रगति करने के लिए, आध्यात्मिक जगत का अभ्यास करने के लिए हम वैष्णव आचरण का पालन करें। तो शिवजी इतने श्रेष्ठ होते हुए भी जब आचरण करते हैं, श्री कृष्ण भगवान होते हुए जब आचरण करते हैं अपने से वरिष्ठों से, कैसे उन्होंने कुंती महारानी से, हालांकि कुंती महारानी उन्हें प्रणाम करती हैं अपनी प्रार्थनाओं में, कुंती महारानी उन्हें प्रणाम करती हैं, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज नामालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रिहे। तो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं तब वो प्रणाम करती हैं, लेकिन जब भगवान आया करते थे तो वो कुंती महारानी के चरण स्पर्श करते थे। ये प्रेम है, अपने ही भक्तों के चरणों को स्पर्श करते हैं भगवान। राजसूय यज्ञ में उन्होंने ये सेवा ली, उनको दी नहीं गई थी, भगवान ने ली कि जितने भी भक्त आएंगे मैं उनके चरणों को धोऊंगा। आप सोचिए, भगवान स्वयं श्री कृष्ण हर भक्त के चरणों को धो रहे हैं, ब्राह्मणों के चरणों को धो रहे हैं। स्वागत है आपका राजसूय यज्ञ में। और सारे ब्रह्मांड से ऋषि मुनि आए थे। नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, आपको पता है ये सारे ब्रह्मांड से क्यों आए हैं ऋषि मुनि? बड़े बड़े ऋषि मुनि जहां जहां अलग अलग लोकों में रहने वाले वो सब आए थे राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज के। तो आपको पता है क्यों आए हैं? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हाँ भगवान है यहां, सब कृष्ण के दर्शन के लिए आए हैं। नारद मुनि ने कहा, नहीं, कृष्ण के दर्शन के लिए नहीं आए हैं यहां पर, वो तो आपके दर्शन के लिए आए हैं कि हम देखना चाहते हैं ये कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके यज्ञ में श्री कृष्ण लोगों के चरणों को धो रहे हैं, है कौन ये युधिष्ठिर, हम देखना चाहते हैं, इसलिए आए हैं आपको देखने, भगवान को देखने नहीं आए। तो ऐसे भगवान हैं अपने भक्त के लिए, इनको इसीलिए उनको भक्त वत्सल कहा जाता है। भक्त वत्सल यानी ऐसे भगवान जो एक वत्स की तरह, जैसे गाय अपने बछड़े को रक्षा करती है, प्रेम करती है, सब कुछ प्रदान करती है, बछड़े को सब कुछ माँ से मिलता है, दूध माँ से पीता है, उसकी रक्षा माँ करती है, अगर कोई पास आए तो मारने जाती है, उसको प्रेम माँ करती है, जब जन्म होता है सारा खून लगा होता है उसको चाट चाट कर माँ साफ करती है, तो ऐसे कृष्ण हैं, इसीलिए उन्हें भक्त वत्सल कहा जाता है कि अपने भक्तों को एक वत्स की तरह वो प्रेम करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनको पोषण देते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, और कभी कभी तो चाटते भी हैं, जैसे नरसिंहदेव ने चाटा प्रहलाद महाराज को। तो ऐसे हैं भगवान भक्त वत्सल। तो शिवजी इस आचरण को करके दिखला रहे हैं कि कैसे, तो भगवान भी आचरण करते हैं, इसलिए हमें भी वैष्णव आचरण को कभी नहीं भूलना चाहिए। वैष्णव आचरण न करने से संबंध खराब होते हैं भक्तों में आपस में, इसीलिए वैष्णव आचरण बहुत आवश्यक है ताकि हम अच्छे संबंध बनाए रखें आपस में, और अच्छे संबंध होंगे तो स्वतः कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो इसलिए वैष्णव आचरण बहुत आवश्यक है जीवन में। हमें जानना चाहिए कैसे अपने वरिष्ठों के साथ आचरण करना है, कैसे अपने बराबर वालों के साथ आचरण करना है, कैसे हमसे जो छोटे हैं उनसे कैसे आचरण करना है, भगवान के समक्ष आए तो कैसे आचरण करना है, भक्तों के साथ हो तो कैसे आचरण करना है, बाहर के लोगों के साथ हो तो कैसे आचरण करना है, ये सब हमें सीखना चाहिए, और इससे बड़े अच्छे संबंध हो जाते हैं। नहीं तो हम लोग साथ रहते रहते एक दूसरे को बड़ा सस्ता ले लेते हैं, हम एक दूसरे के आदर को भूल जाते हैं और इससे अपराध हो बैठते हैं, जैसे शिव जी के प्रति हो गए। दक्ष ने सोचा, ये तो मेरा दामाद है, जमाता है, तो इसको तो मेरा आदर करना चाहिए, ये साथ में रहने से, निकट आने से ये हो गया, भूल गया शिवजी की स्थिति को, कि शिवजी भले तुम्हारे दामाद हैं लेकिन हैं कौन, ब्रह्मा जी भी प्रणाम करते हैं। सती देवी ने कहा आगे कि ब्रह्मा जैसे देवता भी उनके चरणों की धूल अपने सर पर रखते हैं। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है हम वैष्णव आचरण को कभी नहीं त्यागे। तो शिवजी ने आचरण किया, प्रणाम किया, और फिर ब्रह्मा जी बोलने से पहले मुस्कुराए। प्रभुपाद लिखते तात्पर्य में क्योंकि ब्रह्मा जी भी घबरा रहे थे कि अभी बात करूंगा दक्ष की और अचानक फिर से क्रोध में आ गए, बाल निकाल के पटक दिया तो मैं भी जाऊंगा। तो इसलिए मुस्कुराए पहले ताकि शिव जी देखें अच्छा शांत तो हो जाए। ऐसे होता ना, आप किसी से बात करने जाओ तो पहले मुस्कुरा दो तो वो व्यक्ति थोड़ा शांत तो हो जाता है, आप बिना मुस्कुराए ऐसे जाओ तो व्यक्ति भी बेचारा दुखी दुखी भाव में बात करे। तो ब्रह्मा जी पहले ही मुस्कुरा दिए, बोलने से पहले हंस दिए, ताकि शिव जी अगर गुस्से में भी हों तो उनका शांत हो जाए गुस्सा। और फिर ब्रह्मा जी बोलने लगे और ब्रह्मा जी ने गुणगान किया। उन्होंने कहा कि आप तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप तो रचयिता हैं, आप ही सृष्टि करते हैं, आप ही संहार करते हैं, तो इसीलिए आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। उनके क्रोध को शांत करने के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो यज्ञ है ये आप ही तो प्रारंभ कराते हैं, आपने तो निमित्त बनाया है, दक्ष तो केवल निमित्त है, फिर दक्ष को क्यों मारना, यज्ञ तो आप शुरू कराते हैं। प्रभुपाद समझाते हैं कि जो ब्रह्मा जी गुणगान कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं आपकी स्थिति जानता हूं, आप भगवान के विस्तार हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा प्रतगस्ति हेतु। तो शंभु क्या है, शिव जी क्या है, जैसे दूध से दही बनता है ऐसे ही कृष्ण से शिव जी आते हैं, कोई अंतर नहीं है, दूध और दही पदार्थ एक ही है, लेकिन थोड़ा सा विकार आ जाने से वो दही हो जाता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे मैं जानता हूं ये यज्ञ भी आप ही करवाते हो, तो फिर क्यों दक्ष को मारना, दक्ष को मारने की क्या आवश्यकता है। और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि वैसे भी जीवों को अपने कर्मों का फल मिलता ही है, उनको मारने की क्या जरूरत है, वो तो वैसे ही मरने वाले हैं। शिव जी को संतुष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि आप क्यों मार रहे हैं, वो तो वैसे ही अपने कर्मों से मरेगा, तो जीव अपने कर्मों से वैसे ही मर जाता है, आपको क्या करने की आवश्यकता विशेष उसको मारने की। तो ब्रह्मा जी एक दृष्टि से थोड़ा से शिव जी को यह भी समझा रहे थे कि आपने गलती की, मारना नहीं चाहिए था, ठीक है जो भी उसके कर्म है वो मिल जाते हैं उसको, आपने क्यों मार दिया, उसको आदेश क्यों दे दिया कि मार दो। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने बताया कि आपको नहीं करना चाहिए था, और क्रोध तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, व्यक्ति अपने ही कर्म से मारा जाता है। और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे भक्तों का तो लक्षण है कृपा करना, आपको तो कृपा करनी चाहिए। हाँ आपने दक्ष को मारा ये भी आपकी कृपा ही होगी, मैं जानता हूं कि कृपा ही है, लेकिन फिर भी दक्ष को मार देने से यज्ञ समाप्त तो हो जाएंगे, आगे कोई यज्ञ करेगा नहीं, और यज्ञ तो बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए उन्होंने प्रार्थना की कि आप कुछ काम कीजिए। तो पहली प्रार्थना उन्होंने की कि ये जो यज्ञ का विध्वंस आपने कर दिया है उसको फिर से ठीक कीजिए और यज्ञ शुरू करवाइए, क्योंकि यज्ञ तो होने ही हैं, यज्ञ बंद नहीं हो सकते हैं ब्रह्मांड में। अगर यज्ञ बंद हो गए तो क्या होगा, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि ये जो वर्षा होती है ये यज्ञ से होती है, अन्नात भवंत भूतानि पर्जन्यात अन्न संभवः, सब जो जितने जीव हैं वो अन्न पर आश्रित हैं, अन्न के बिना तो मर जाएंगे, कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, अन्न नहीं है तो कहां जाएंगे। और अन्नात भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभवः, और ये अन्न कहां से आता है, जब वर्षा होती है, वर्षा नहीं होगी तो अकाल पड़ेगा, अन्न नहीं आएगा। और वर्षा कैसे होती है, यज्ञ समुद्भव, यज्ञ के कारण वर्षा होती है। तो इस कलयुग में तो कोई अच्छा यज्ञ नहीं कर रहा, फिर कैसे वर्षा हो रही है। प्रभुपाद समझाते हैं कलयुग का यज्ञ है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ये कलयुग का यज्ञ है। और ये यज्ञ हो रहा है इसीलिए बारिश हो रही है, जब तक ये चलेगा होगी, जिस दिन हरि नाम बंद हो गया दुनिया में बारिश बंद हो जाएगी, इसीलिए इस यज्ञ को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। शायद महाराष्ट्र में लोगों ने ज्यादा नहीं किया होगा, इसलिए अभी सूखा पड़ा हुआ है वहां पर, बट अभी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है। अब बारिश हमने सुना जल्दी आने वाली है इस बार, तो हरि नाम ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे यज्ञ जरूरी है, इसीलिए उन्होंने पहली प्रार्थना की कि आप यज्ञ को पुनः चालू कराइए, बंद मत कराइए यज्ञ को। और दूसरी प्रार्थना उन्होंने की कि आपके जो गण हैं, उन्होंने दक्ष को मारा, उसको पुनर्जीवित कीजिए। पूष के दांत तोड़ दिए, उसको ठीक कीजिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस बात को। भग की आंखें निकाल दी, उसको ठीक कीजिए। और जो भृगु मुनि की मूछे निकाली थी, वो वापस लगवाइए। बड़ा खरा था, बड़ा गलत किया है ये, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ये अपमान कर दिया है ब्राह्मणों का, तो इसको वापस कीजिए, सब वापस लगाइए। मतलब जैसा था वैसा कीजिए। और साथ ही साथ ये जो आपके गण वहां पर जाकर जो देवताओं के किसी के हाथ तोड़ाए हैं, किसी के पांव तोड़ाए हैं, किसी की गर्दन तोड़ाए हैं, उन सबको भी ठीक कीजिए। तो शिव जी को क्या समझा रहे हैं कि आपके आदेश पर ही ये सब हुआ है, अब आप ही इसको ठीक कीजिए, क्योंकि आपने ही सारा ये सब करवाया है, अब आप ही इसको ठीक कीजिए। तो ऐसे उन्होंने प्रार्थना की। और साथ ही साथ उन्होंने शिव जी से ये भी प्रार्थना की कि आप भी यज्ञ में अपना हिस्सा स्वीकार कीजिए। दक्ष ने कह दिया था आपको हिस्सा नहीं दे रहे थे, लेकिन आप भी हिस्सा लीजिए, क्योंकि आपको भी लेना चाहिए, आपको भी भाग लेना चाहिए। ब्रह्मा जी सोच रहे थे ये नहीं कहूंगा तो अगली बार फिर कुछ हो जाएगा, शिव जी को कोई पोर्शन उनका यज्ञ का हिस्सा नहीं देगा, इसलिए आप भी स्वीकार करना शुरू कीजिए। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने प्रार्थना कर ली और फिर चुप हो गए यज्ञ शुरू करवाने की इच्छा से। तो यज्ञ ये भगवान की संतुष्टि के लिए होता है, हमें प्रयास करना चाहिए कि जो भी यज्ञ हम करें वो भगवान की संतुष्टि के लिए हो। तो ऐसे कहकर ब्रह्मा जी फिर अब चुप हो गए और आगे अगले अध्याय में शिव जी इनका उत्तर देंगे कि क्या करना है, क्योंकि इन्होंने तो प्रार्थना कर दी कि दक्ष को पुनर्जीवित कीजिए, उसके उनके जो दांत टूट गए थे उनको लगाइए, आंखें लगाइए, हाथ पांव तोड़ दिए वो सब ठीक कीजिए। तो अब अगले अध्याय में शिव जी इसका उत्तर देंगे, सातवें अध्याय में। और फिर उसके बाद और एक यज्ञ होगा, सातवें अध्याय में हम देखेंगे कि एक यज्ञ भी होगा, दक्ष यज्ञ करेंगे क्योंकि शिव जी क्षमा कर देंगे। और फिर आठवें अध्याय से ध्रुव महाराज की कथा प्रारंभ होगी।